आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय HD स्मार्टकास्ट।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। आज बजेगी लोकसभा चुनाव की रणभेरी, ECI विधानसभा चुनाव का भी करेगा ऐलान। भारतीय निर्वाचन आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग लोकसभा के साथ साथ चार राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा करेगा। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की जा सकती है। इस बात की संभावना है कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में कराया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को नव नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने अपना कार्यभार संभाल लिया। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभाओं का कार्यकाल जून में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था। मतगणना 23 मई को हुई थी। निर्वाचन आयोग ने 2014 में भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए संवाददाता सम्मेलन बुलाए जाने की सूचना एक दिन पहले दी थी। संवाददाता सम्मेलन के लिए पत्रकारों को एक दिन पहले शाम को निमंत्रण भेजा गया था। आगामी चुनावों में 12 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर करीब 97 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र हैं। पीओके हमारा, वहां के हिंदू और मुसलमान भी हमारे, अमित शाह ने पाकिस्तान को बताया अत्याचारी देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके के लेकर अपनी पार्टी और केंद्र सरकार का स्टैंड साफ करते हुए शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, पीओके, भारत का हिस्सा है, इसलिए वहां के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हमारे लोग हैं। एक टीवी इंटरव्यू में अमित शाह ने देश के विभाजन को गलत बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ है। अमित शाह ने कहा कि आजादी के वक्त वहां हिंदुओं की संख्या 23% थी, जो अब घटकर 2.7% रह गई है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, महिलाओं से दुष्कर्म किया गया। ऐसे ही प्रताड़ित लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हैं। भला ऐसे लोगों को हम नागरिकता क्यों नहीं दें? 1950 से जो वादा था, उसे कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, हम उसे पूरा कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, भाजपा 300 पार और NDA 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल का एजेंडा है। पिछले चुनाव में हमने 300 का टारगेट सेट किया था और 303 सीटें आई थी। मैं आज फिर कहता हूं कि NDA इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने पार्टियां तोड़ने के आरोप पर जवाब देते हुए कहा, हमने किसी पार्टी को नहीं तोड़ा है। गृह मंत्री ने TDP नेता चंद्रबाबू नायडू को लेकर कहा कि हमने उन्हें गठबंधन से नहीं निकाला था, बल्कि ये उन्हीं का फैसला था। जब वह जनता के पास गए और चुनाव हारे, फिर उन्हें समझ में आया, अब हमारे साथ आ गए हैं, तो सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड से भाजपा को फायदा हुआ है, जबकि हकीकत इससे उलट है। भाजपा के सांसद ज्यादा है, लेकिन उसे केवल 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, जबकि विपक्ष के सांसद कम होने के बावजूद उनको कई गुना ज्यादा मूल्य के बॉन्ड मिले हैं। बाल ठाकरे का बेटा कैसे कर सकता है CAA का विरोध, फडणवीस का उद्धव पर तीखा वार। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे पर उन्हें एक फेल मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार मुंबई में उन चीजों को ठीक करने के लिए मजबूर है जिन्हें वर्षों पहले ठीक किया जाना चाहिए था। फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे को मुंबई के लोगों ने कई मौके दिए लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। शहर में उनके द्वारा एक भी प्रतिष्ठित काम नहीं किया गया या बनाया नहीं गया। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के मोदी विरोधी रुख के लिए उनकी आलोचना की और लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वह कोई प्रयास कर रहे हैं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमारी ओर से उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि वह अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए अब छद्म धर्म निरपेक्ष और विलुप्तीकरण की राजनीति में लिप्त हैं। देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुवादी दिवंगत नेता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को याद करते हुए उनके बेटे उद्धव पर जोरदार हमला बोला है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा, उद्धव ठाकरे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया है। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, 10 से ज्यादा बदले मोबाइल, पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता पर क्या क्या लगे आरोप। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और विधायक के कविता को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले जा रही है। इस केस में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक अमित ने अपने बयानों में कविता के नाम का लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कविता साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी की मुख्य लीडर थी। उन्होंने अन्य कारोबारी के माध्यम से दिल्ली में आपके नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसके बाद मार्च 2023 में ईडी ने इस मामले में कविता का नाम भी शामिल किया। ईडी का दावा है कि कविता उस साउथ ग्रुप में शामिल थी जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सारथ रेड्डी, एम श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मगुंटा शामिल थे। इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू ने किया था। दिल्ली में 2021 से 22 की लिकर पॉलिसी थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण रूप से 12% लाभ मार्जिन और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% लाभ मार्जिन के साथ दी गई थी। ईडी के अनुसार पॉलिसी की 12% मार्जिन में से 6% थोक विक्रेताओं से आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिश्वत के रूप में वापस वसूल किया जाना था। साउथ ग्रुप ने आप नेता विजय नायर को लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत एडवांस में दी थी। इस एडवांस घूस के बदले में विजय नायर ने साउथ ग्रुप को थोक कारोबार में हिस्सेदारी सुनिश्चित की, क्योंकि दिल्ली शराब कारोबार में उनकी कोई पकड़ नहीं थी। इसके अलावा साउथ ग्रुप के साथ हिस्सेदारी साझा करने वाली संस्थाओं में से एक समीर महेंद्रू की इंडो स्पिरिट्स का नाम भी सामने आया। विराट कोहली को T20 विश्व कप में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, डेल स्टेन ने बैक अकाउंट का उदाहरण देकर समझाया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली करीब 2 महीने से क्रिकेट से दूर है। IPL 2024 के लिए भी वह अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जुड़े नहीं हैं। कोहली जनवरी में घरेलू सरजमी पर अफगानिस्तान के खिलाफ हुई T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के बाद से भारत के लिए नहीं खेले हैं। पारिवारिक कारणों से वह इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए थे, जिसके कारण T20 विश्व कप में उनकी जगह को लेकर काफी चर्चा चल रही है। हालांकि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा है कि T20 विश्व कप के लिए विराट कोहली ऑटोमेटिक चॉइस हैं। स्टार स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में पत्रकारों से बात करते हुए डेल स्टेन ने कहा कि विराट कोहली को फॉर्म में लौटने के लिए IPL 2024 में रनों की जरूरत है, लेकिन उन्होंने T20 विश्व कप टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए काफी कुछ किया है। हालांकि विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 2022 T20 विश्व कप के बाद से केवल 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। साउथ अफ्रीका के दिग्गज डेल स्टेन ने कहा, देखिए ये जरूरी है कि वह रन बनाए, लेकिन आखिर में मैं रन की संख्या को ऐसे ही देखता हूँ जैसे आप किसी के बैंक में राशि देखते हैं। विराट ने इतने वर्षों में रनों का अंबार लगाया है जो विश्व कप की टीम चुनने में उनके लिए फायदेमंद होगा। चयनकर्ता टीम में ऐसे खिलाड़ी को शामिल करना चाहेंगे जो पहले भी इसमें खेल चुका हो और अच्छा प्रदर्शन कर चुका हो, और विराट ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने कहा, कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल में ऊंची छलांग लगाई है क्योंकि उसने ब्रेक लिया था, और ऐसे कई दावेदार हैं जिन्हें विश्व कप टीम में शामिल करना संभव है।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।